मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन द्वारा भ्रष्टाचार की सुनवाई पर त्यागपत्र। प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की योजनाओं के विवरण की रूपरेखा तैयार और एनआरएल अधिकारियों द्वारा ग्रैंड फाइनल क्लैश की योजनाओं के बारे में आपातकालीन बातचीत। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन ने राष्ट्र के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग द्वारा जांच के संदर्भ में त्यागपत्र दे दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग ने आज सुबह घोषणा की कि वो इस बात की जांच के लिए सार्वजनिक सुनवाई करेगा कि क्या सुश्री पेरिजिक्लियन ने श्री मैग्वायर के मतदाताओं को अनुदान देने में सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन किया और ये भी कि क्या वो श्री मैग्वायर के भ्रष्ट आचरण की रिपोर्ट करने में विफल रहीं। सुश्री पेरिजिक्लियन वागा वागा के पूर्व लिबरल सदस्य डेरल मैग्वायर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में थीं, जिन्होंने वित्तीय लाभ के लिए अपने सार्वजनिक कार्यालय और संसदीय संसाधनों का उपयोग किया था। आज सुबह की गई घोषणा में सुश्री पेरिजिक्लियन ने किसी भी गलत काम से इनकार किया।
Resigning at this time is against every instinct in my being and something which I do not want to do. I love my job and I love serving the community, but I have been given no option following the statement that's been issued today. To continue as Premier would disrupt the state government during a time when our entire attention should be focused on the challenges confronting New South Wales. I do not want to be a distraction from what should be the focus of the state government during this pandemic, which is the well-being of our citizens. It always has been and always will be.
सुश्री पेरिजिक्लियन का कहना है कि जैसे ही न्यू साउथ वेल्स लिबरल पार्टी नए नेता का चुनाव करती है वो पद छोड़ देंगी और विलगी की सीट पर उपचुनाव के साथ वो संसद से भी इस्तीफा दे देंगी। सुश्री पेरिजिक्लियन के त्यागपत्र पर प्रतिक्रिया भी आश्चर्यजनक रही। कई नेताओं ने बयान जारी किए हैं जिनमें उनके डेप्यूटी न्यू साउथ वेल्स नेशनल के जॉन बारिलोरो शामिल हैं, जिन्होंने सुश्री पेरिजिक्लियन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगला नेता लिबरल पार्टी का एक मामला है। उनके फेडरल नेशनल समकक्ष और उप प्रधानमंत्री बानबे जॉयस का कहना है कि राजनीति एक क्रूर पेशा है और ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को खोना दुखद है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये समाचार प्राप्त किया और कहा कि सुश्री पेरिजिक्लियन बहुत ही साहसी गुणों वाली हैं और एक करीबी दोस्त और सहयोगी हैं।
I know how much she is trusted and respected by the people of New South Wales, and I have no doubt that Gladys will always conduct herself in a way that suits the integrity of the office that she's held, and I know how seriously she takes that trust. I've always found Gladys to be a person of the highest integrity.
उधर लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी ने सुश्री पेरिजिक्लियन के लिए कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान नेतृत्व प्रदान करने की पूरी कोशिश की है और कहा कि उनका त्यागपत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की कितनी अधिक आवश्यकता है।
मिस्टर मॉरिसन रिफ्यूजेस टू अप्लाई द सेम सेट ऑफ इंटीग्रिटी दैट ग्लैडिस पेरिजिक्लियन applied to herself today. It is now more than 1,000 days since Scott Morrison promised to have a national anti-corruption body. Well, tick tock, Mr. Morrison. We need a national anti-corruption commission.
ऑस्ट्रेलिया अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अपनी सीमाओं को उन राज्यों के लिए फिर से खोल देगा जो 80% दोहरी खुराक टीकाकरण लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को पिछले साल मार्च से बंद कर दिया गया है और कम से कम 45,000 लोग विदेशों में फंसे हुए हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगाने की आवश्यकता होगी और चीनी निर्मित सिनोवैक और भारतीय निर्मित कोविशील्ड को मान्यता प्राप्त टीके के रूप में माना जाएगा। प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि यात्री होटल के लिए भुगतान करने के बजाय 7 दिनों के लिए घर पर रह सकेंगे।
It's time to give Australians their lives back. We've saved lives, we've saved livelihoods, but we must work together. to ensure that Australians can reclaim the lives that they once had in this country. And we must work together to achieve that goal. That's what the National Plan is all about.
विक्टोरिया के सभी अधिकृत कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक की आवश्यकता होगी यदि वे साइट पर काम करना जारी रखना चाहते हैं। विक्टोरिया ने कल संक्रमण में एक बड़ी वृद्धि के बाद आज 1143 नए स्थानीय मामले और 3 मौतों को दर्ज किया है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के 50.9% लोगों को अब पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 80.9% ने कम से कम एक खुराक ली है। प्रीमियर डेनियल एंड्रूज का कहना है कि अनुमति प्राप्त वर्कर्स को 26 नवंबर तक पूरी तरह से टीका लगाने की आवश्यकता होगी।
This is critically important to keep the case numbers down so that we can open up on the 26th of October, get our freedom back, get the economy going again, and deliver the national plan.
और विक्टोरियन कंस्ट्रक्शन साइट सोमवार यानी 4 अक्टूबर से प्रतिबंधों के साथ फिर से खुलेंगी। ये 2 सप्ताह से बंद थी जिनके कारण कंस्ट्रक्शन वर्कर ने वैक्सीन जनावेश पर बड़े विरोध प्रदर्शन किए थे। इस बीच बैलराट और मेलबर्न के बीच मुरुबुल शायर COVID-19 मामलों के चलते आज रात 11:59 से 7 दिनों के लॉकडाउन में चला जाएगा। न्यू साउथ वेल्स ने आज स्थानीय रूप से अधिग्रहित 864 नए मामले और COVID-19 से 15 अन्य मौतों की रिपोर्ट की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 9 को टीका नहीं लगा था, 1 व्यक्ति को 1 खुराक मिली हुई थी और 5 को टीका लगा हुआ था। 16 वर्ष से अधिक आयु के 87% से अधिक लोगों ने न्यू साउथ वेल्स में COVID-19 वैक्सीन का पहला टीका लिया है। उच्च टीकाकरण और कम COVID-19 जोखिम के कारण निजी सेटिंग्स में गैर जरूरी वैकल्पिक दिन की सर्जरी मंगलवार यानी 5 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी। ACT में 52 नए कोविड संक्रमण और 2 मौतें दर्ज की गई हैं। मृत लोगों में 80 के दशक की आयु के 2 लोग हैं जो कैलवेरी हेडन एज्ड केयर फैसिलिटी के निवासी थे, दोनों ही पैलिएटिव केयर प्राप्त कर रहे थे। आज के 40 नए संक्रमण लिंक्ड हैं, लेकिन कम से कम 31 संक्रामक होते हुए समुदाय में मौजूद थे। मुख्यमंत्री एंड्रू बार ने इसे टेरिटरी के लिए अब तक महामारी का सबसे कठिन दिन बताया है।
So today's increase in case numbers will come as a shock to many, but it's an important reminder that the virus is still very much active in our community. Every time you leave your home and interact with other people, there is a risk that you may contract the virus.
Queensland ने 2 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना वायरस मामलों को दर्ज किया है। राज्य उडयन क्षेत्र में एक COVID-19 क्लस्टर से जूझ रहा है। राज्य ने 19,764 कोविड परीक्षणों को संसाधित किया और अधिकारी संभावित सामुदायिक प्रसारण के बारे में चिंतित हैं, क्वींसलैंडर से सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। क्वींसलैंड प्रीमियर एनेस्थेसिया पैलेसी का कहना है कि फिलहाल लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण अनलिंक होता है तो स्थिति बदल सकती है।
We do need to make sure that people in Brisbane, Logan, Gold Coast, Moreton Bay, Townsville and Palm Island continue to adhere to those stage 2 restrictions. We need people to keep getting tested. We need people to keep wearing this mask.
उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कथित तौर पर एक विमान भेदी मिसाइल दागी है जो इस सप्ताह किए जा रहे उनके हथियारों का दूसरा परीक्षण है। परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उत्तरी कोरिया के साथ बातचीत में अमरीका एक तरह से पूरे गतिरोध में है। प्योंगयांग का कहना है कि हथियारों के परीक्षण से उसकी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। नॉर्थ कोरिया का आरोप रहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ शत्रुतापूर्ण नीतियां रखता है। परीक्षण उत्तरी कोरिया में अधिक परिष्कृत हथियारों के बढ़ते विकास को भी उजागर करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि उनके प्रशासन का उत्तरी कोरिया के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल बृहस्पतिवार को कहा है कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। उन्होंने कल बृहस्पतिवार को कहा कि चीनी सेना के उकसाने वाले वर्ताव और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश ने शांति को गंभीर रूप से भंग कर दिया है। चीन ने हाल में आरोप लगाया है कि दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण भारत द्वारा आगे बढ़ने की नीति का अनुसरण करना और चीनी क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना है। इसके जवाब में भारत की प्रतिक्रिया आई है। चीन के आरोपों पर पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए बागची ने कहा कि भारत कुछ दिन पहले ही इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है और ऐसे बयानों को खारिज कर चुका है जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए शेष मुद्दों को शीघ्र हल करने की दिशा में काम करेगा। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच कई वार्ताएं हो चुकी हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के 53.60 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में एनआरएल के अधिकारी क्वींसलैंड में पैंथर्स और रैबिटॉ के बीच सप्ताहांत ग्रैंड फाइनल क्लैश की योजना के बारे में आपातकालीन बातचीत कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या कोविड 19 के कारण खेल को ब्रिस्बेन से टाउन्सविल में स्थानांतरित करने के बजाय स्थगित कर दिया जाए। कल गुरुवार को स्वास्थ्य जोखिम के कारण भीड़ की क्षमता को घटाकर 75% कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि कुछ टिकटों को अब वापस करना पड़ा। ये पहली बार है जब निर्णायक मैच सिडनी के बाहर आयोजित किया गया है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में देर शाम तक बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। होबार्ट में बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।